ओम शांति। और राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति शक्तियों की, उसके संबंध में आपका ये क्लास है। सबका सम्मेलन का सार यही है कि आप सब यहाँ पर आए हैं और 3-4 दिन यहाँ के वातावरण को देखा, सबने अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा होगा। सबको अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। अच्छा लगा है इसका मतलब क्या हुआ? ये अच्छा अनुभव आपका बराबर होता रहे। यहाँ से जाने के बाद विद्यालय में पहुँचना ज़रूरी है। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं रोज, वैसे ही आत्मा को भी रोज भोजन ज़रूर देना है, और वो भोजन है ज्ञान और योग की। तो यहाँ से जाने के बाद आप रेगुलर होने की कोशिश करें, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन जाएं और वहाँ कोर्स भी करेंगे और आगे की भी होगी। और अभी आप मेहमान बन के आए हैं और फिर महान भी बन जाएंगे। दिव्य मानव बनना तो है हम सबको, लेकिन दिव्य मानव बनने के साथ दिव्य मानव बनाना भी है, बहुत बड़ी सेवा है। विश्व का परिवर्तन वो आत्म परिवर्तन के ज़रिए होगा। वो लेसन देने के लिए हमारे सामने बैठी हैं अल्पा बहन, संख्या बहुत थोड़ी सी है, लेकिन आपको बहुत आवश्यक बातें कुछ सुनाएंगी। अल्पा बहन का हम परिचय कैसे दें, लेकिन इतना परिचय क्लियर है कि हम सब पिछले 20-25 साल हो गए हैं शायद कल्चरल विंग की, ना
30 साल, हाँ जब से बना है।
जी जी, तब से जो है आप कल्चरल विंग में, आर्ट एंड कल्चर विंग में, दिल्ली टैगोर पार्क है, वहाँ से आप आई हैं। और ज्ञान में चलते हुए तो बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए होंगे।
40 वर्ष से आप से
क्या बात, इनके लिए ताली तो बजाइए। अनमोल, सेवा में ही 40 वर्ष हो गए और बचपन ही ज्ञान में हो गया, बचपन ही पूरा। हम सबका जीवन ऐसे बीता, मुझे भी पूरा 65 वर्ष में, 5 साल का था, बड़ा हुआ, परिवार में सब ज्ञान में आ गए और हम लोग चलते रहे। और मधुबन में होते 45 साल मधुबन में हो गए, यहाँ माउंट आबू में। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको यहाँ बुलाने के लिए। बहुत दिन से योग कर रहे थे, परमात्मा को याद कर रहे थे कि हमारे भाई बहनें ये कब आएंगे, कभी हम इनसे मिलेंगे। तो बड़ी तपस्या का परिणाम रहा कि जब आप यहाँ पर आए, और अब ये यात्रा हमारी अनवरत चलती रहे, विश्रृंखलित ना हो, चलता रहे। इसके लिए आप सबका बार बार स्वागत है। दीदी को मैं कहूँगा, अल्पा दीदी, जो बहन सुनाना था वो बहन गई, कही संख्या बहुत कम है, क्या सुनाऊँ, वो तो बहन चली गई। उनके जगह पर मैंने अल्पा बहन को कहा कि दीदी आप अपने अनुभव भी सुनाइए और आपको भी रिफ्रेश करें, इम्पोर्टेंट बात भी बताएँ। तो हम एक बार फिर से ताली बजा के अल्पा बहन का स्वागत करते हैं।
ओम शांति। आप सबने इस सुंदर परिसर में आकर के इस सम्मेलन का और साथ साथ राजयोग शिविर, जो रोज ही सुबह का सत्र आप सबके लिए रखा गया होता है, उसका अगर पूरी रीति से आपने लाभ लिया तो बहुत कुछ पाया होगा। कौन है जिन्होंने सभी दिनों में रोज ही ये सत्र किए हैं? अच्छा, आप सभी हैं जो लगभग रोज ही आते रहे हैं, तो इसीलिए आज भी बहुत अच्छे से आप उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो सर्वप्रथम तो आप सबका आज के सत्र में दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक जो भी बातें सभी सुनते आए हैं कि परमात्मा का जो दिया हुआ ये ज्ञान है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी गुरु के द्वारा, कोई अन्य शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं नहीं हैं। हम अगर यहाँ कोई बैठ कर के शिक्षा देते भी हैं तो वे भी स्वयं अपना ज्ञान नहीं देते हैं, परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान, परमात्म ज्ञान, ईश्वर का डायरेक्ट परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, वही आप तक पहुंचाने के लिए हम बीच में केवल निमित्त माध्यम बन जाते हैं। तो इसीलिए आप जो भी यहाँ पर आकर जो शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, जो इतनी श्रेष्ठ उच्चतम बातों को यहाँ पर आकर श्रवण कर रहे हैं, ये डायरेक्ट परमात्म ज्ञान है। आप सबने इन्हीं राजयोग शिविर के दौरान ही सुनी है बातें कि हम सब आत्माएं हैं और हम सर्व आत्माओं के परम पिता, एक ही पिता परमात्मा है। केवल हम माना यहाँ पर बैठे हैं उतने की बात नहीं है, जो सुन रहे हैं सुना रहे हैं उतनों के लिए नहीं है, परंतु परम पिता माना सारे विश्व की, सर्व आत्माओं के वे परम पिता हैं। और उनके इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार परमात्मा ने सर्व विश्व की आत्माओं के लिए पूरा अधिकार सबके लिए बराबर का ही रखा है। परंतु यही है कि इस संसार में इतना मनुष्य डूबा हुआ है अपने दैहिक कार्यों में, सांसारिक कार्यों में, जिनमें डूब करके ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो समय नहीं दे पा रहा है। वो उसका ध्यान इस तरफ नहीं ला पा रहा है। तो जो आत्माएं इस संसार के इतने आकर्षणमय वातावरण के बीच में से भी निकलकर, क्योंकि संसार में एक तरफ ज़रूर दुख, अशांति, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स अवश्य हैं, फिर भी क्योंकि कहने में तो आता है दुख में सिमरण सब करें, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की तरफ सबकी बुद्धि दुख के समय तो अवश्य आती हैं, आनी चाहिए, फिर भी आज ऐसे दुख भरे संसार में भी इतने मायावी आकर्षण भी हैं जिसमें फंस करके ईश्वर की तरफ जो ध्यान लगना चाहिए वो भी बहुत कम आत्माओं का ध्यान ईश्वर की तरफ लग पाता है। तो ये अभी जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने हेतु अपना समय दे रहे हैं, अपने लिए इस प्रकार का महत्व समझते हुए परमात्म ज्ञान की ओर अपना रुख किया हुआ है, उनको कितना भाग्यवान आत्माएं कहा जाएगा। तो आप सभी अपने आप को पद्मा पद्म भाग्यवान महसूस कर सकते हैं कि इतने भरे संसार में हम वो बहुत महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, जिनको परमात्मा की पाने की एक अंदर की सच्ची लालसा है, अंदरूनी इच्छा है, और वो इच्छा ही आपको यहाँ पर पहुँचा करके यहाँ बिठाया हुआ है। नहीं तो आज के दिन की भी अगर आज बात देखें तो आज इस सम्मेलन में आए हुए अनेक हैं, है ना। इस सम्मेलन में 200, 300, 350 के करीब सभी आए हुए हैं, अपने अलग अलग विभिन्न स्थानों से इस ज्ञान सरोवर परिसर में ही सभी यहाँ पर हैं मौजूद। फिर भी उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने तक कौन पहुँच पाया है, बहुत गिने चुने। तो ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। कहा जाता है भगवान जब भाग्य बांट रहा होता है तो कई आत्माएं सोई रह जाती हैं, कई आत्माएं वंचित रह जाती हैं, परंतु वो भाग्यवान आत्माएं उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए अपने बुद्धि की झोली को खोल करके बैठ जाती हैं। तो उस बुद्धि की झोली में ईश्वरीय ज्ञान के रतन, परमात्म ज्ञान के सच्चे मोती, वो उस बुद्धि की झोली में भरने लग जाते हैं। तो आज ऐसा ही अनुभव आप सब कर रहे हैं कि हम वो परमात्म भाग्य जो भगवान बांट रहा है, और हम अपने झोली खोल करके भरपूर करने के लिए आ गए हैं। आपने राजयोग के विषय में भी सुना कि किस प्रकार से हम आत्माएं अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ करके रखें, क्योंकि जब बुद्धि की झोली में हमें परमात्मा से कुछ लेना है तो लेने के लिए हमें उनसे कनेक्शन पूरा जोड़े रखना आवश्यक हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति वही कर सकता है जिन्होंने अपनी तार जोड़ी हुई है। ये मन और बुद्धि की तार उस ईश्वर पिता के साथ जोड़ने से ही परमात्म करंट हम तक पहुंच पाती हैं। बिजली की तार के लिए तो आप सबको मालूम ही है कि जब तार सही कनेक्शन जोड़ करके उसको जोड़ा जाता है, प्रॉपर विधि से प्रॉपर स्थान पर अगर वो तार को जोड़ा जाता है, तभी पावर हाउस की करंट को हम अपने कार्य में ले सकते हैं। नहीं तो पावर हाउस तो पावर सप्लाई कर रहा है, चारों ओर कर रहा है, परंतु उस पावर सप्लाई को कैच कौन, ले कौन पा रहा है, यूज़ कौन कर पा रहा है, जिसने अपनी तार को पावर हाउस के साथ जोड़ा होता है। इसी रीति परम आत्मा, परम शक्तिवान, सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों का भंडार, ज्ञान का सागर, तो ज्ञान गुण और शक्तियों का अथाह भंडार है ईश्वर, परंतु उनसे वो ज्ञान, वो गुण, वो शक्तियाँ अपने अंदर में भर कौन पाता है जो अपनी तार जोड़ करके बैठा है। संसार के कार्यों को करने के बाद भी अपना कुछ समय वो इस ईश्वर के लिए देने के लिए अपनी इच्छा सदैव दर्शाता है, हमेशा बनाए रखता है कि मुझे सारा समय पूरा ही समय इस संसार के कारोबार में नहीं बंधे रहना है। दुनिया तो या संसार के कार्य तो बहुत बंधन में बांधे रखेंगे हमको, एक में से छूटना चाहेंगे तो दूसरे में बंध जाएंगे। परंतु हमारी दिल की इच्छा होनी चाहिए कि वो भी करेंगे, परंतु उनको करने के साथ साथ हम ईश्वर के लिए अपना कुछ समय अवश्य देंगे। परमात्मा के प्रति यही तो सच्चा संबंध कहलाता है। हम उन परिवार वालों के प्रति जिनको हम अपना सच्चा संबंधी समझते हैं और इसीलिए उनके प्रति हम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हम कितना समय, शक्तियाँ, अपना तन, मन, धन सब कुछ ही उनके प्रति लगाते हैं, उस अपने सांसारिक परिवार के प्रति वहाँ अपना कितना ज़रूरी फर्ज समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। तो इसी प्रकार से हम वास्तव में तो आत्मा हैं और ये देह तो टेम्पररी है, एक जन्म का है ये साधन, और हमारी इस देह के साथ जुड़े हुए वे सब संबंधी हैं जो एक जन्म के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। परंतु मैं आत्मा, अविनाशी आत्मा हूँ जो इस जन्म में, आगे के जन्म में और आगे के जन्म में भी रहूँगी, परमानेंट हूँ ना मैं आत्मा, तो अविनाशी सत्ता हूँ। उस हर जन्म के लिए देह के संबंधी अवश्य बदल जाएंगे, एक इस जन्म के अलग है, इससे पहले जन्म में भी हमारे कुछ संबंधी होंगे जिनको हम छोड़ करके इस जन्म में आए हैं, और इस जन्म के छूटेंगे तब आगे और भी संबंधी दूसरे जन्म में मिलते रहेंगे, परंतु वे बदलते रहते हैं। और सदाकाल का संबंध हमारा परमात्मा के साथ का है, जो पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, आगे के जन्मों में भी बना रहेगा। तो परमपिता परमात्मा के साथ का ये अविनाशी संबंध हुआ हमारा, और उस अविनाशी संबंधी उनके साथ हम अपना फर्ज निभाने के प्रति कितना ध्यान रखते हैं। अपने शरीर के एक जन्म के संबंधियों के प्रति पूरा जीवन लगाने के लिए हम सदा तैयार रहते हैं, उनके उनमें कहीं कमी न रह जाए, कुछ अधूरापन न रह जाए, उसके प्रति हमारा कितना ख्याल रहता है। और परमात्मा के प्रति जो सदा काल का संबंध जिनसे हैं, और वो तो एक में ही सर्व संबंध हैं, आपने सुना ही होगा उनके परिचय के समय जब आपको बताया गया कि वो केवल परम पिता, एक ही संबंध नहीं है कि वो पिता और हम उनके संतान, परमात्मा माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु सर्व संबंधी हैं ना हमारे, उस एक के द्वारा ही हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति होती है। वे सर्व संबंधों का हमारे लिए फर्ज खुद निभाते हैं, अपनी तरफ से वे पिता बनकर हमारा कितना पालना का कार्य करते आए हैं। शिक्षक बनकर आज इस विद्यालय को परमात्मा ने बनाया शिक्षा देने के लिए, वे शिक्षा देते रहते हैं। परमात्मा माता के रूप में हमारी सच्ची पालना करते हैं, हमारी दिल की बातें सुनते हैं, वे बंधु सखा बनकर साथ निभा सकते हैं, उनकी तरफ से वे सर्व संबंधी बन करके वे हमें अपने अनुभव, अपने साथ का अनुभव, अपने द्वारा जो भी पालना और प्यार का अनुभव है वे देने के लिए तत्पर हैं। लेने वालों को लेना आना चाहिए, हम लेने वाले पात्र बने, सुपात्र बनेंगे अवश्य ही परमात्मा की वो प्यार और पालना, साथ और सहयोग, शिक्षाओं का और वरदानों का हम सदा ही अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। और इसीलिए परमात्मा हमसे यही चाहते हैं कि जितना आप उन संबंधों के साथ अपना फर्ज समझ करके पूरा समय शक्ति लगाते हो, उनमें से थोड़ा, सारा नहीं परमात्मा लेना चाहते मांगते हैं, सब करो उनके प्रति, परंतु उनमें से थोड़ा तो ईश्वर के प्रति दो, कुछ तो परमात्मा के प्रति। और परमात्मा को भी वो अपने प्रति नहीं चाहिए, वो आपका समय और शक्ति अगर देने के लिए कह भी रहे हैं तो वे उन समय और शक्तियों में आपको ही कुछ देना चाहते हैं, भरपूर कर देना चाहते हैं। परंतु वही जो पहले बात सुनी कि जो कनेक्शन जोड़ेगा उनको ही तो वो करंट दे पाएगा, तो इसीलिए तार जोड़ने की हमारी तरफ से हमें अपने समय और शक्तियों को दे करके अपनी तार जोड़ने के लिए हमें ज़रूर महत्व समझते हुए अपने आप को परमात्मा के प्रति ये अपना फर्ज पालन करना ज़रूरी है। जब परमात्मा से हमारा सही रीति से समय प्रति समय कनेक्शन जुड़ता रहेगा, हर रोज़ अवश्य ही हमें दिन के इस 24 घंटे में कुछ समय तो परमात्मा के लिए अवश्य ही देना है। ये नहीं एक दिन तो हमने कुछ किया परमात्मा के खातिर, फिर चार दिन छूट गया, पांच दिन छूट गया, फिर कभी थोड़ा समय निकला या ध्यान आया तो फिर हमने समय निकाला, तो ज़रूर हमारा बीच का जो गैप है उसमें जितना हमने लिया है वो भी फिर यूज़ हो जाएगा, फिर हम खाली हैं। परंतु रोज़ लेते रहेंगे, रोज़ हम परमात्मा से प्राप्ति करते रहेंगे तो रोज़ ही भरते 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 हमारी झोली कितनी भर सकती है, कितनी भर जाएगी। वही परमात्मा चाहते हैं अब हमारे इस संसार के लिए समय भी कितना कम रह गया है, समय चक्र का भी ज्ञान आप सबने लिया है कि कितना समय का ये पूरा चक्र समाप्ति की ओर जा रहा है, और उस समाप्ति के समय परमात्मा नए चक्र के लिए हमें भरपूर करने के लिए इस समय आपका समय मांगते हैं कि थोड़ा समय अगर इस अंतिम घड़ियों में भी दे देंगे तो मैं अगले समय के लिए, अगले चक्र के लिए आपको इतना भरपूर कर दूंगा जो पूरा चक्र आप बैठ करके उसका फल अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सकेंगे। जो भरपूर झोली की होगी उसके द्वारा आप अपना आगे का अनेक जन्मों का जीवन यापन कर सकेंगे। तो इसीलिए ये अमूल्य घड़ियां हैं, यही कलयुग के अंतिम समय की ये अमूल्य घड़ियां हैं जिसको संगम युग नाम दिया गया, जो आप सबने सुना होगा। तो यही घड़ी कलयुग के अंत और सतयुग के बीच के संगम युग की घड़ियां चल रही हैं। जब संगम युगी आत्माएं अर्थात संगम युग के इस समय में परमात्मा जिन आत्माओं के लिए आए हुए हैं, भगवान सबको बांटने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो अपने समय और शक्तियों को परमात्मा कार्य में लगाते हैं, उनको परमात्मा भरपूर कर पाते हैं, बाकी सबको परमात्मा देना चाहते हुए भी उनका ध्यान नहीं है ईश्वर की तरफ, उनकी तार जुड़ी हुई नहीं है ईश्वर की तरफ, तो वे करंट भी कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए हमारी तरफ से भी पहला कदम होना ज़रूरी है कि हम परमात्मा के पास पहुँचे, अपने मन को लगाएं, तो परमात्मा के द्वारा फिर अथाह खजाना हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा को कहा ही जाता है अनेक शक्तियों के दाता। जिन शक्तियों की हमारे वर्तमान समय के जीवन यापन में भी, जीवन के कर्तव्यों में भी बहुत आवश्यकता होती है, ऐसी शक्तियाँ जो परमात्मा के साथ इस राजयोग का अभ्यास अर्थात मन की तार जोड़ने के द्वारा हमें वो शक्तियों की प्राप्ति होती है। मुख्य रीति से उनमें अष्ट शक्तियों का वर्णन किया जाता है परमात्मा के द्वारा। होने को तो अथाह शक्तियाँ हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा के शक्तियों को तो गिनती करने की बात नहीं होती है, परंतु फिर भी उनमें से कुछ ऐसी शक्तियाँ जो अष्ट शक्तियों के रूप में सिलेक्ट की गई हैं, जिन शक्तियों की आम साधारण जीवन में सांसारिक कार्यों को करते हुए हमें बहुत आवश्यकता पड़ती हैं, ऐसी वो शक्तियाँ हैं, जिनमें से एक शक्ति है सहन करने की शक्ति। आप सब जानते हैं कि सांसारिक इस कार्यों में रहते, परिवार में रहते, समाज में रहते, अनेकों के बीच में संपर्क संबंध में आते, अपने कार्य व्यवहार में रहते, कितने स्थान पर सहन करने की बातें आती हैं, कितने इस प्रकार के कार्य व्यवहार में ऐसी घटनाएं, ऐसे अचानक से कुछ हादसे हो जाते हैं, बात आकर के खड़ी होती हैं, जहां पर सहन करने की शक्ति की अति आवश्यकता होती है। परंतु एक सहन शक्ति की कमी के कारण मनुष्य कभी कभी स्वयं से, कभी खुद ही हिम्मत हार जाता है, कभी कोई बात में निराश हो जाता है, कोई बात में अपना आपा खो बैठता है, कुछ बातें सहन न करने के कारण दूसरों से संबंध बिगाड़ लेता है, वायुमंडल अपने आसपास का खराब कर बैठता है, और उससे आज के इस संसार के अंदर में जिसको हमें कलयुग कहना पड़ रहा है, कहल कलयुगी जीवन बन चुका है, उसका मूल कारण ये भी एक है कि सहन शक्ति की कमी है। मनुष्य एक दूसरे की कुछ छोटी छोटी बातों को भी सहन नहीं कर पाता है, जीवन में आने वाली कई परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाता है। सहन शक्ति वास्तव में एक वृक्ष के उदाहरण से बताई जाती हैं कि जैसे वृक्ष को, छोटे बच्चे वृक्ष पे लगे हुए सुंदर फल फूल उसको पाने के लिए उस पर पत्थर मारते हैं, जब पत्थर फेंकते हैं परंतु वृक्ष उसको पत्थर नहीं देता है, बच्चे ने पत्थर फेंका परंतु वृक्ष ने उसको क्या दिया, मीठा फल देता है। जब बच्चा पत्थर फेंकता है वृक्ष के प्रति, तो उसके ऊपर लगे हुए पके हुए फल जल्दी गिर जाते हैं, और पके हुए फल मीठे होते हैं। तो इसी प्रकार से इस संसार में वास्तव में देखा जाए तो हमें इस प्रकार की सहन शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता है, जो राजयोग के माध्यम से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके ही ये शक्ति हम प्राप्त कर पाते हैं। जब हम इस संसार के अनेकों व्यक्तियों के बीच में व्यवहार में आते हैं तो कई पत्थर फेंकने वाला अर्थात हमारे दिल को हमारे मन को क्षति पहुंचाने वाला, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, परेशानी का रूप देने वाला कोई व्यवहार कर बैठता है, कोई शब्द बोल देता है, कोई ऐसे हमारे साथ ऐसे परेशानी का रूप बन करके जीवन में हमारे साथ कोई व्यक्ति बना हुआ होता है। परंतु हम परमात्म शक्तियों को प्राप्त करने वाली आत्मा, राजयोगी आत्मा अगर बन करके रहें तो हमारे अंदर में उनके प्रति क्षमा का भाव, आप सबने कई सेशन में ये बातें सुनी हैं कि क्षमा का भाव हमारे अंदर में ना? हमेशा दूसरों को क्षमा करते जाएं, उन्होंने ऐसा कर दिया इसीलिए मैं या तो अपने को दुखी करता रहूं, परेशान करता रहूं, या फिर टिट फॉर टैट, तुमने मुझे दुखी किया तो मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा, तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें भी पत्थर मारूंगा, या कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर का जवाब, ईंट से या ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसे बना हुआ है ना शब्द। ये योगी जीवन या ईश्वर की संतान का कार्य नहीं कहलाता। अगर मैं आत्मा अपने आप को समझूं और मैं भगवान का बच्चा अपने आप को, मैं परमात्मा संतान हूं ये अपने आप को समझूं, इसी को कहते हैं मैंने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ा हुआ है, मैंने परमात्मा को अपना माना है, वो मेरा है। दिल से आपने बोला है ना मेरा बाबा, जब आप परमात्मा को मेरा बाबा, हमारा शिव बाबा है ऐसा दिल ने स्वीकार किया है, तो यही है हमारा दिल परमात्मा के साथ के संबंध को स्वीकार कर रहा है, माना ही हमारा कनेक्शन है, वही राजयोग है, वही परमात्मा के साथ की मेरी तार जुड़ी हुई मानी जाएगी। और जब हम इस प्रकार का अपने अंदर में अनुभव करते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, मैं तो एक आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये व्यक्ति अगर मुझे सामने वाला तंग करता है, परेशान करने का कारण बना हुआ है, वो कोई भी संबंध में है मेरे साथ, लेकिन वो तो इस संसार के एक जन्म का टेम्पररी संबंध वाला ही व्यक्ति है ना, कोई ना कोई, कोई भी संबंध वाला होगा परंतु एक जन्म का टेम्पररी संबंध है उनके साथ का। और वो आत्मा भी इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं आत्मा भी इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट प्ले करने के लिए आई हुई हूँ, परंतु मैंने अभी वर्तमान समय में इस परमात्म शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए अपने आप को भगवान का बच्चा महसूस किया है, परमात्मा के साथ मैंने संबंध जोड़ा है, तो अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है भगवान के बच्चे के नाते, मैं उस आत्मा को क्षमा करने वाला बनूं, मैं उसकी बात को सहन कर सकता हूं क्योंकि परमात्मा शक्तियां मेरे में भर रही हैं, मैंने परमात्मा के साथ तार जोड़ रखी हैं तो उनकी शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं और वो मैं शक्तियों को समाने वाली सहनशील आत्मा बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, तो वो सहनशील आत्मा को अब दूसरों के व्यवहार को देख करके अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना है, वो ऐसा करता है तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँ, ये संकल्प भी ईश्वरीय संतान में नहीं आएगा, वो उसके प्रति रहम का भाव रखेगा कि उसको शायद परमात्मा शक्ति पूरी नहीं मिली हुई है, उसकी तार परमात्मा से अच्छे से नहीं जुड़ी हुई है, तो वो आत्मा ऐसा कर रही है, परंतु मेरी तो तार जुड़ी हुई है और मैं तो परमात्मा का सच्चा बच्चा बन करके उनसे शक्तियां ले रहा हूं, तो मैं अपने व्यवहार को उसके जैसा क्यों कैसे बना सकता हूं? वो ऐसा तो मैं भी ऐसा बन जाऊं क्या? वो अपने को भगवान का बच्चा नहीं समझ रहा होगा, परंतु मैं तो परमात्मा का बच्चा अपने को समझ रहा हूं। तो मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञानी आत्मा हूं, परमात्मा को समझदार बना करके चल रहा हूं, तो मैं समझदार व्यक्ति ऐसा कर्तव्य नहीं कर सकता। इस प्रकार से परमात्मा से शिक्षाएं प्राप्त करने वाली आत्मा और परमात्मा से मन बुद्धि की तार जोड़ने वाली हम आत्मा में कभी इस प्रकार का नहीं आएगा कि हम दूसरों के जैसा ही व्यवहार, वो गलत करता है तो मैं भी गलत करूं। तब सहन शक्ति मांगनी नहीं पड़ेगी, कोई और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यही तो सहन करना कहा जाएगा। हमने उसकी बात को आई गई कर दिया, लेट गो, जैसा भी उसने किया छोड़ो, बात को ख़त्म करो। ये है क्षमा भाव। और मैं अपनी तरफ से अपना श्रेष्ठ व्यवहार, क्योंकि मैं भगवान की संतान, सुख शांति से भरपूर आत्मा, वो सुख का सागर, वो शांति का सागर मुझ पर सुख शांति सदैव बरसाता रहता है, तो मैं भरपूर आत्मा हूँ, तो मैं उसको दुख देने का, तकलीफ देने का कार्य नहीं, सुख देने का ही सदैव कार्य करती रहूँगी। तो मेरे कर्मों में हमेशा श्रेष्ठता ही बनी रहेगी, ये शक्तिशाली जीवन कहलाता है। उसने अगर दो शब्द सुनाए और मैंने चार सुना दिए, इसको शक्तिशाली नहीं कहा जाता है कि देखो उसने तो दो सुनाया ना, मैंने तो उसको चार सुना दी, तो इसीलिए मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, ऐसे माना जाता है। नहीं, यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है, ये सबसे बड़ी हमारे अंदर वीकनेस मानी जाएगी कि उसने दो सुनाई, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ ही पहले तो मैं कमज़ोर हूँ कि उसकी बातों को मैं सहन नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, और फिर मैंने गलत वाली ही ऐसी चार बातें उसको सुना दी, तो मैं किसकी संतान कहलाऊँ, भगवान की संतान या शैतान की संतान? तो ये तो वीकनेस हुई मेरी, जो मैं परमात्मा संतान न बन करके शैतानी कर्मों में मैं वशीभूत हो गई, उस शैतान के परवश होकर के मेरे से गलत कर्म हो रहा है। तो ये वशीभूत आत्मा कभी पावरफुल कहलाती है क्या? वशीभूत आत्मा माना ही कमज़ोर है, वो जो कमज़ोर होता है वो ही किसी बात के वशीभूत हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा शक्तियों को अपने अंदर में ग्रहण करना माना ही अपनी ओर से कुछ भी गलत कदम नहीं उठने देना, अपनी ओर से कोई भी गलत व्यवहार नहीं होने देना, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना, वो कैसा भी व्यवहार दें लेकिन मेरी तरफ से हमेशा सुख मिलेगा, साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, शांति मिलेगी, क्योंकि मैं परमात्मा के द्वारा भरपूर झोली भरपूर करने वाली आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान से मैंने तार जोड़ करके शक्ति भरी हुई है अपने अंदर में, और ऐसी शक्तिशाली आत्मा का कितना श्रेष्ठ व्यवहार सबके प्रति बन जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा शक्तियों को देने वाले, जिसमें सहन करने की शक्ति के साथ समाने की शक्ति आती है, दूसरी शक्ति का नाम है समाने की शक्ति। अर्थात जैसे नदियों का सारा पानी सागर में समाता है, सागर अपने में सारा समाता जाता है, समाता जाता है, सागर में बाढ़ नहीं आती है, नदियों में फिर भी बाढ़ आती हुई दिखाते हैं, परंतु सागर में सारा पानी समा जाता है, तो कितनी विशालता है उसमें। ऐसे सागर सम हम परमात्मा सागर के बच्चे हैं, तो हम भी परमात्मा के समान अपने में समाने की वो शक्ति ग्रहण कर लेते हैं, भर लेते हैं, जो इस संसार की नेगेटिव बातें, इधर की उधर की जो भी बातें हैं उसको अपने में समा लेना। नहीं तो आजकल समाने की जगह बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, इधर से कुछ व्यर्थ का समाचार सुना, किसी की कमी बुराइयां सुनी, तो दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं पाएंगे। आपको पता है इसका, ये बात मुझे वहाँ से पता चली, आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, मैं बता देती हूँ। तो ये क्या हुआ, बाहर निकलना माना समाने की शक्ति की कमी है। विश्व के लिए परमात्मा कहते हैं, सारा विश्व हमारा ईश्वर के बच्चों का परिवार समझ के हमें चलना है। हम भगवान के बच्चे तो परमात्मा के लिए, परमात्मा के सारे विश्व की आत्माएं भी सब उनके बच्चे हैं, वो हमारा परिवार हो जाता है। जब हम अपने सांसारिक घर के लिए ये बात ज़रूर ध्यान में रखते हैं, कहते हैं घर की बात घर में ही समा लेनी चाहिए, बाहर नहीं फैलानी होती हैं, ये शोभा नहीं देता है। कमी कमज़ोरी की, कोई भी घर की कोई कमी कमज़ोरी की बातें होती हैं उसको बाहर शो ऑफ नहीं करते हैं, ज़्यादा छुपा के रखते हैं, समा लेते हैं, इसको समाना कहा जाता है। कि बुराइयाँ दूसरों की जो हैं, अपनों की खास करके बुराइयाँ जो हैं, बुरी बात होती हैं, गलत बातें, वो ज़्यादा फैलाने का भाव नहीं रहता। तो विश्व को भी परिवार समझेंगे तो सारे विश्व के परिवार की किसी की भी कोई बुराई हो, किसी की भी कोई गलत बात हो, हम दूसरों में क्यों फैलाएंगे, इधर उधर क्यों फैलाएंगे। ये है समाने की शक्ति। व्यर्थ की बातों का समाचार आज खास करके मोबाइल में, ये बहुत आदत हो गई है, जहाँ से भी जो न्यूज़ हमारे पास पहुँचेगी और फालतू की होगी, माना दुख की होगी, तकलीफ की होगी, फलानी जगह ये एक्सीडेंट, वहाँ ये हादसा, ये बात, तो हम दूसरों को तुरंत फॉरवर्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। परेशानी की, तकलीफ की, नुकसान की, अशांति की बातें अगर मैंने सुनी तो दूसरों को क्यों सुनाएं, उनके मन को क्यों अशांत करें। हम अपनी तरफ से अगर कोई सुख शांति वाली कोई ऐसी न्यूज़ है, अच्छा कुछ फ़ायदा देने वाली, हमारे जीवन को सुकून देने वाली, शांति देने वाली, अच्छा गुणवान बनाने वाली ऐसी कुछ न्यूज़ हो, तब ठीक है, फॉरवर्ड करो, दूसरों के जीवन का भी भला हो जाएगा, हमारा भी जीवन सुख से भर रहा है, हमें कोई जीवन में शांति की कोई न्यूज़ मिली है या कोई इस प्रकार का ज्ञान मिला है, तो हम दूसरों को बांटने का कार्य करें। इस प्रकार का तो ज़रूर फॉरवर्ड कर सकते हैं, परंतु हम नेगेटिव बातों को, नेगेटिव न्यूज़ को फटाफट फॉरवर्ड करके हम चारों तरफ अशांति का माहौल फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। औरों के अंदर में अशांति अभी पहुंची नहीं थी, मैंने पहुंचा दी, तू भी अशांत हो जा थोड़ा, तेरे को तो अभी तक पता ही नहीं था, लेकिन मैंने तेरे को अशांत करने के लिए ये न्यूज़ पहुंचा दी। तो ये मैं किस कार्य के निमित्त बन रही हूँ, दूसरों को शांति देने के या अशांत करने के निमित्त। तो बहुत ध्यान देने वाली ये छोटे छोटे कर्म कहलाते हैं, ये हम सोच नहीं पाते हैं कि मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज गलत वाला, अशांति फैलाने वाला, दूसरों के मन को थोड़ा तकलीफ देने वाला न्यूज़ या ऐसा कोई भी कार्य है, उसको मैंने अगर फॉरवर्ड किया, ये भी मेरा कर्म बन गया। और कौन सा कर्म बन गया? विकर्म बन गया, एक खराब कर्म बन गया कि मैंने दूसरे को, अच्छे भले व्यक्ति को अशांत कर दिया, क्योंकि अशांति का एक मैसेज भेज दिया, परेशान मन को परेशान करने वाला एक मैसेज मैंने भेज दिया। हम सोचते हैं मैंने क्या किया, वो तो था ही, कहीं से भी आता, लेकिन मैं निमित्त बन गया ना, कहीं से आता तो वो बात अलग है, लेकिन मैं निमित्त ना बनूं, मेरे हाथ से ना जाए, मेरे हाथ से गया तो मेरा कर्म बनेगा ना। तो इसी प्रकार से हम समा नहीं पाते हैं, बात को खत्म नहीं कर पाते हैं, चलो जो भी नेगेटिव सुना समा लो, खत्म करो बात को, हमने आगे नहीं बढ़ानी है बात। तो इस बात में हम अगर अपने आप को सक्षम बनाते हैं, वो ज्ञान और राजयोग के माध्यम से ही हमारे में ये कला आती हैं, ये समझदारी आती हैं, इसको कहते हैं समाने की शक्ति भरती हैं। और आगे के शक्ति बताते हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। कोई भी कार्य करने के लिए परख करके फिर निर्णय लिया जाए तो उसमें सफलता सहज मिलती है, अच्छी मिलती है, लेकिन कई कार्यों में हम समय को, स्थान को, व्यक्ति को, उनके व्यवहार को ठीक से परख नहीं पाते हैं और धोखा खा जाते हैं, तो गलत निर्णय भी तब ले लेते हैं क्योंकि सही परखा नहीं, और परख करके सही डिसीज़न नहीं ले पाए तो हम गलतियां कर बैठते हैं। सामने वाले ने अगर कोई थोड़ी सी बात हमारे साथ गलत तरीके से की है तो थोड़ा परखने की ज़रूरत है कि किसी बात से वो थोड़ा तकलीफ़ में खुद होगा, परेशान होने के कारण उसके मुख से ऐसे बोल निकल गए हैं, आज ऐसा लग रहा है कि वो कुछ परेशानी में होगा तभी उसने थोड़ा सा जोश में बोला। वैसे तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि हर समय मेरे साथ गलत ही बोलता है, लेकिन आज बोल दिया, आज कुछ तो परखना है कौन सी सिचुएशन में वो चल रहा है, इस कारण से आज उसका ऐसा बोल निकला। तो फिर मेरी तरफ से तो उसको और ही शांति देने का, अच्छा राहत देने का उसके प्रति व्यवहार होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको इस समय ज़रूरत है शांति की, राहत की। उसकी जगह मैं उसकी बात को बुरा मना करके परखा नहीं ना बात को, तो मैंने उसके शब्दों को गलत समझा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे तो हमेशा ही मेरे साथ ठीक से बात करता है, लेकिन आज ऐसे क्यों बोला उसने, तो बात को परखा नहीं, और हम भी उसके साथ जोश में आके कुछ बोल देते हैं तो उसकी दुख को और ही बढ़ाने के निमित्त, वो पहले ही कहीं से दुखी होकर के कहीं से कोई परेशानी में हमारे सामने अपनी बात को कुछ कहने आया और उसके बोल में थोड़ा सा खराबी आ गई थी, क्योंकि अंदर से कुछ परेशानी से भरा हुआ था, वो हमारे प्रति बोलना चाहता नहीं होगा तो भी आज उससे निकल गया होगा, परंतु मैंने परखा नहीं ना, तो इस कारण से मैं भी उसके साथ गलत कर बैठूं तो उसके साथ के संबंध को कितना खराब कर लेंगे। तो ऐसे हम कभी कभी अपने लिए ही कुछ और दूसरों के लिए नुकसान करने वाले कार्य कर बैठते हैं। इसको भी कहा जाता है ये दो शक्तियों की कुछ कमी हमारे अंदर में रह जाती। तो जब हम ईश्वरीय शक्तियों को लेने के लिए समय और अपना ज़रूर अपना समय रोज दिया करेंगे, परमात्मा में मन बुद्धि जोड़ा करेंगे, तो उन शक्तियों को हम अपने में अनुभव कर पाएंगे कि ये शक्तियाँ मेरे में बढ़ती जा रही हैं, परखना भी और निर्णय करना भी मेरे में बढ़ करके मैं आत्मा सही समय पे सही कर्म कर सकती हूँ, नहीं तो मेरे कर्मों में भी गलती हो जाती हैं और कोई बात में मैं धोखा भी खा सकती हूँ। तो इस कारण से हमें ये शक्तियों की बहुत ज़रूरत पड़ती हैं समय समय पर सांसारिक कार्यों में, परंतु हम राजयोग का अभ्यास नहीं करते हैं तो इन शक्तियों का अपने में अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे शक्तियाँ बताई जाती हैं, सामना करने की शक्ति। सामना किससे करना है? किसी मनुष्यों का मनुष्यों से सामना की बात नहीं है। हमारे जीवन में कोई जो हमारे संबंधी हैं, संपर्क में हैं, उनसे सामना करने की नहीं, हमारे स्वयं के जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना, हमारे जीवन में आने वाली दुखद परिस्थितियों का सामना, अचानक में आने वाली कुछ इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे जीवन में अचानक आकर के खड़ी हो जाती है। हम उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सामना नहीं कर पाके हिम्मत हार जाते हैं। अचानक की परिस्थिति, अचानक बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई हादसा हो जाना, कोई नुकसान हो जाना, कोई घाटा हो जाना, बीमारी पकड़ लेना। आजकल बीमारी अचानक ही पता चलती है, डायग्नोज होती है और पता चलता है ये मेरे जीवन में या मेरे कोई परिवार के मेंबर को कोई अचानक से बीमारी ने पकड़ा। ये अचानक की घटना ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या का रूप लेकर के आई। परंतु ऐसे समय में एकदम घबरा जाता है व्यक्ति, कई तो इतना ज़्यादा परेशानी का रूप लेकर के अपने आप को ही जैसे बेहोश कर देता है या कहें कि रोने लग जाती है आत्माएं। इस प्रकार से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत अशांत हो जाते हैं। डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि कुछ बात, कोई अचानक आने वाली परिस्थिति ने को मन पर ले लिया, उसको मन में बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। परंतु हमें ऐसी बातों को फेस करना है, हमें मजबूत बनना है, हमें शक्तिशाली बन करके उस समय ऐसी मुश्किलों का सामना करना होता है। और ऐसे समय में सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ा हुआ हो, जिसने सर्वशक्तिमान को अपना सर्वसंबंधी बनाया हुआ है, उनका साथ मिलने के कारण वो ऐसी परिस्थितियों में डावाडोल नहीं होता, वो इन मुश्किलों में अपने आप को परेशान नहीं करता, उसमें से रास्ता ढूंढता है। हर समस्याओं के पीछे उसका कुछ निवारण भी तो होता ही है, परंतु हम सही निवारण को निकालने के पहले खुद ही डिस्टर्ब हो करके कभी कभी गलत कदम भी उठाने वाले बन जाते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाना या कोई गलत कार्य कर बैठना, ये भी वास्तव में सामना करने की शक्ति की कमी के कारण होता है ना, कि हम मुश्किलों का सामना नहीं कर पाए, हम मुश्किलों में धराशायी हो गए, परेशान हो गए। तो जिसने ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ा है वो ऐसी मुश्किलों में नहीं आएगा, क्योंकि वो सामना करने की शक्ति प्राप्त करने वाला अधिकारी बन चुका है, उसमें वो शक्ति भर चुकी है, वो सही समय पे परमात्मा से अपने साथ को लेकर के परमात्मा से अपने मन की बात करते हुए उनका सहयोग लेता है। भगवान के आगे अपनी बात रखनी होती है कि आज ऐसा हो गया मेरे साथ, या आज ऐसी बात आ गई, अचानक से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, अब आप मेरे साथी बनो, आप उनको बुला लो अपने साथ, भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो, इनमें से पार करने की शक्ति आप में है, अब आप ही रास्ता बताएंगे तो हम पार हो सकेंगे, तो अवश्य ही परमात्मा हमारा सच्चा साथी, सच्चा सहयोगी बनने के लिए बैठा हुआ है। वो तो आपकी तरफ से पुकार सुनने के लिए बैठा हुआ है, परंतु सच्चे दिल के हृदय के भाव से और अपने वही सच्ची विधि से, विधि है अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से मन की तार जोड़नी पड़ेगी, ये सही विधि है। उस विधि से परमात्मा के आगे अपनी बात रखेंगे कि परमात्मा मैं आपका बच्चा और आप हमारे परम पिता हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आपके बच्चे को आज ये मुश्किल आई है, मुसीबत आई है, तो आप हमारा ख्याल नहीं करेंगे क्या? आप ज़रूर करेंगे। अधिकार रख करके उनके आगे बात रखेंगे तो अवश्य ही उनकी मदद मिलती है। उसके बाद बताते हैं सहयोग शक्ति। ईश्वरीय संतान जो परमात्मा संतान है वो परमात्मा से सहयोग लेने वाली और औरों को सहयोग देने वाली सदा ही बनी रहती हैं। उनके अंदर में सहयोग का परमात्मा से जब इतना प्राप्त कर रही हैं तो दूसरों के लिए कभी सहयोग देने में पीछे नहीं रह सकती। वो सहयोगी सदैव अपना तन मन धन जहाँ जितना जहाँ जिस चीज़ के सहयोग की अच्छे कार्य में ज़रूरत होती हैं वहाँ ज़रूर सहयोग देने के निमित्त बनती हैं। और उसके बाद दिखाते हैं संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करना अर्थात एक कछुए के माफिक जब आवश्यकता हो तो इस सांसारिक कार्यों में अपने मन को लगाना और जब कार्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी कार्यों में तो हमें अपने मन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है दुनियावी कारोबार में, परंतु हर समय उसमें बंधे नहीं रहना है। जैसे ही कोई कार्य से फ्री हुए दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए जितना टाइम है उसको ईश्वर के साथ जोड़ लिया, इसको कहते हैं विस्तार में से संकीर्ण कर लेना अपने आप को। जितना फैलाया था अपने मन को बुद्धि को अपने सारे कर्मेंद्रियों को एक दुनिया के कारोबार में लगाया होता है, जैसे भोजन बनाने का माताएं बहनें कार्य करती हैं तो भोजन बनाने में पूरा मन बुद्धि लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे उस कार्य से फ्री हुए दो मिनट फिर रिलैक्स होके परमात्मा में मन लगा के बैठ जाएं, तो वो हैं विस्तार में से फिर अपने को संकीर्ण कर लिया, सिकोड़ लिया। संकीर्ण करना माना सिकोड़ लेना, और सिकोड़ करके ईश्वर में मन लगा के बैठ गए। बहुत सारी बातें हो रही होती है, बहुत माना ज़्यादा कारोबार में हम बिज़ी होते हैं और बहुत सारे कारोबार में से थोड़ी देर का समय निकाल के हम चारों तरफ से मन को हटा करके थोड़ी देर ईश्वर में लगा के रख के एक मिनट का भी थोड़ा परमात्मा में तार जोड़ करके शक्ति लेकर के फिर कार्य शुरू करें। इसको भी विस्तार में आना, फिर संकीर्ण करना, फिर विस्तार में आ जाना। ये आदत जब हम डालते रहेंगे बार बार अपने आप को ज़रूरत के हिसाब से संसार के कार्य में जाना लेकिन फिर बीच में परमात्मा के पास अपने आप को ले जाने की आदत डालेंगे तो अवश्य ही हम अनेक शक्तियों से भरपूर होते रहेंगे। नहीं तो हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है मेडिटेशन करने का, हम राजयोग कब करें, हमारे पास तो बहुत हम बिज़ी रहते हैं। परमात्मा कहते कितने भी बिजी हो पानी पीने के लिए तो टाइम होता है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी बिजी हो अपना पानी पीने का भोजन करने का, चलो कभी कभी कहते खाने का भी टाइम नहीं मिला लेकिन पानी तो पीते ही है ना। तो इस प्रकार से ऐसा थोड़ा सा भी टाइम जैसे हो निकालते हैं तो वो उस पानी पीने के टाइम ही क्यों ना हो ईश्वर में भी अपना मन साथ साथ लगा लिया जाए। थोड़ी सेकंडों के लिए ही परमात्मा के पास पहुंच जाया जाए। मन को कहाँ टाइम लगता है इतना ऊपर उड़ान ले भरने में, मन को उड़ने में टाइम नहीं लगता है, तो सेकंड में पहुंच जाओ ईश्वर से, अपने को टच करो परमात्मा से, थोड़ी सी किरणें अपने में भर लो और फिर आ जाओ, फिर अपने को इस संसार के कार्यों में लगा लो। ये है विस्तार में आना फिर संकीर्ण करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना ज़रूरी है। ऐसा ना हो घंटों घंटों हो गए हमें परमात्मा की तरफ अपने मन को ले जाने का याद ही नहीं रहा, ये याद करते रहना, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा हमें अभ्यास, बीच बीच में याद करने का अभ्यास बढ़ाते रहना पड़ेगा। भूल जाएंगे, परंतु हमें यही तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने मन के ऊपर। और उसके बाद की एक शक्ति है, वो है समेटने की शक्ति, अर्थात इस संसार से अब हमें समेटना शुरू करना है। ये संसार का अंतिम घड़ियों का समय चल रहा है, अंतिम घड़ियां माना अब यहाँ से सफ़र हमारा नया शुरू होने का टाइम आ गया है। कहीं व्यक्ति सफ़र पर जाता है तो अपना बैग बैगेज पैक कर लेता है, तो अब पैकिंग करने का टाइम आ गया है। परमात्मा कहते हैं अब यहाँ से चलो, नाटक पूरा हो रहा है और नाटक पूरा होने के बाद सब एक्टर्स को अपने घर जाना होता है। तो विश्व नाटक भी पूरा होने का, कलयुग अंत समय आ चुका है और अति तमोप्रधानता की इस अति का अंत आने का समय भी आ चुका है, जिसको महाविनाश का समय भी कह सकते हैं। वो महाविनाश की घड़ियां चारों ओर बिल्कुल सामने दिखने लग गई हैं कि अचानक के हाथ से कैसे बड़ा बड़ा विनाश कर रहा है, बड़े बड़े रूप से विनाश होने लगा है चारों ओर। तो ऐसे समय में हम कौन से चपेटे में आ जाएंगे पता नहीं है, उससे पहले हम अपने समेट करके बैग बैगेज तैयार कर लें। हमारा कब इस संसार से जाने का समय आ जाएगा, क्योंकि आजकल अचानक की मौत के कितने समाचार सुनने को मिलते हैं, अचानक वाली, बैठे बैठे भी व्यक्ति चलना चाहते। तो कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो जाएगी हमें कुछ नहीं पता है, परंतु उससे पहले जितना समय मेरे हाथ में है, आज भी अगर मेरे हाथ में आज का दिन है तो मैं उसमें कुछ अपने बैग बैगेज को भर लूँ। वो कौन से बैग बैगेज को भरना है, कुछ साथ जाता है क्या, कहते हैं कि साथ तो कुछ नहीं जाता, नहीं, हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ कर्म जाते हैं, हमारे साथ अनेक गुण शक्तियाँ आत्मा में जो भर करके हम ले जाते हैं, पुण्य का पूंजी कहते हैं, पुण्य की पूंजी, पुण्य की कमाई, वो क्यों नहीं जाएगी साथ में, जाएगी कि नहीं, ये सब साथ जाता है, बहुत कुछ हम अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ईश्वर से परमात्मा इस समय जो बांट रहे हैं, वो लेकर के वही ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारे साथ जा सकती हैं, परमात्मा के सिखाए हुए श्रेष्ठ कर्मों से पुण्य की पूंजी जमा करें, वो हमारे साथ जा सकते हैं। हमारे कर्म तो हमारे साथ जाएंगे ना, तो वही तो हमें जमा करने हैं, उसको जमा करने का ये बहुत थोड़ा समय है, उसमें हमें अपने आप को बैग बैगेज को समय से पहले जितना ज़्यादा हो सके अपने अच्छे कर्मों को बना करके भरपूर हो जाना है। ये सब साथ जाने के लिए ज़रूर हमें अपने आप को तैयार करना है। तो ये हैं आठ शक्तियाँ, इन अष्ट शक्तियों को परमात्मा से लेकर के हम अपने आप को इस थोड़े समय के परमात्मा कार्य में, हमने जो अपने आप को थोड़ा समय दिया इस चार पांच दिन का, आप सबने लाभ लिया और उसको लाभ को लेकर के अपने अपने अंदर में अनेक गुण और शक्तियाँ भरी भी हैं और आगे के लिए भरपूर करते रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है कि ये समय जितना दिया वो सारा पानी में न चला जाए, हमें उसको बनाए रखना है, हमें उसको बढ़ाते जाना है। उस संकल्प के साथ आगे के लिए आप अवश्य ही अपने अपने नज़दीक के सेवा केंद्रों पर जा कर के ईश्वर के कार्य में अपना समय, अपना सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। परमात्मा और कुछ नहीं, थोड़ा समय ही मांगते हैं, आप अपना समय देंगे तो परमात्मा कहते हैं मैं आपको भरपूर करने के लिए बैठा हूँ, तो उस समय को आप अवश्य ही देने की अंदर चाहना रख कर के ही आज से जाएंगे। ऐसी आशा रखते हुए आज के इस सेशन को पूरा करते हैं। ओम शांति। कुछ पूछना है? जी दोहरा देते हैं एक बार, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ठीक है, चलें अभी हम उस परमात्मा शक्तियों को लेने के लिए अपनी तार जोड़ते हैं।